एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी दूसरी साथी।
और आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही या तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं या फिर मतलब जहन में कई सवाल उठने लगते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे।
बिल्कुल, नीत्शे को समझना हाँ आसान तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन गाइड है माइकल टैना और उनकी किताब नीत्शे। ये किताब इस जटिल विचारक को समझने की एक शानदार कोशिश है।
और आज के जमाने में नीत्शे शायद पहले से भी ज्यादा मतलब प्रासंगिक हो गए हैं ना?
हाँ बिल्कुल।
जब पुराने आदर्श पुरानी मान्यताएं जैसे धुंधली पड़ रही हैं, तो नीत्शे के सवाल क्या ईश्वर के बिना जीवन का कोई अर्थ है, क्या अच्छाई और बुराई वो सिर्फ इंसानी सोच है, ये सीधे हमारे समय की आप कह सकते हैं नब्ज पर हाथ रखते हैं।
सही कहा, और टैनर का नजरिया इसमें खास है। वो नीत्शे को सिर्फ एक विध्वंसक विचारक या जैसे लोग कहते ना नाजीवाद के प्रेरणा स्रोत के तौर पर नहीं देखते, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है।
हाँ, ये धारणा तो बहुत आम है।
बिल्कुल, टैनर उन्हें एक सांस्कृतिक चिकित्सक की तरह पेश करते हैं, मतलब कोई ऐसा जिसने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की रूहानी बीमारियों को पहचाना और उनका इलाज भी सुझाने की कोशिश की।
तो आज हमारी इस बातचीत का मिशन यही है, माइकल टैनर के चश्मे से नीत्शे को समझना, उनकी वो जो विवादास्पद सी लगने वाली धारणाएं हैं उनके पीछे के असल मतलब को खोजना, और ये देखना कि टैनर कैसे नीत्शे को शून्यवाद यानी निहिलिज्म का प्रस्तावक नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा विरोधी साबित करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं हमारे गाइड माइकल टैनर से। टैनर 1935-2024, वो सिर्फ एक अकेडमिक दार्शनिक ही नहीं थे। हाँ, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेलो थे, लेकिन उनकी एक और पहचान थी, वे संगीत के, खासकर रिचर्ड वाग्नर के संगीत के माने हुए आलोचक थे।
और ये वाग्नर वाला कनेक्शन नीत्शे को समझने के लिए बहुत अहम है ना?
बहुत ज्यादा।
वाग्नर पहले नीत्शे के हीरो थे, एक तरह से प्रेरणा का स्रोत, और बाद में उतने ही बड़े विलन बन गए जिनसे नीत्शे ने मतलब पूरी तरह नाता तोड़ लिया।
हाँ, तो टैनर की ये दोहरी विशेषज्ञता दर्शन और संगीत उन्हें एक खास मुकाम पर खड़ा करती है। वो नीत्शे के विचारों को सिर्फ तर्कों के ढांचे में नहीं देखते बल्कि उस भावनात्मक, सांस्कृतिक और आप कह सकते हैं कलात्मक माहौल को भी महसूस करते हैं जिसमें नीत्शे सोच रहे थे।
उनका लिखने का अंदाज भी काफी अलग है, भारी भरकम अकादमिक भाषा से बचते हुए सीधे पैने और जोशीले अंदाज में बात करते हैं, कुछ कुछ नीत्शे की तरह ही। क्यों?
हाँ बिल्कुल, वो नीत्शे को ऐसे पेश करते हैं जिनके सवाल महज दिमागी कसरत नहीं बल्कि मतलब जिंदगी और मौत जितने जरूरी हैं। ऐसा लगता है जैसे टैनर खुद नीत्शे के विचारों से जूझ रहे हैं और हमें भी इस जद्दोजहद में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं।
अब आते हैं किताब पर, नीत्शे। इसे आप नीत्शे की दुनिया का एक दरवाजा समझ सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नाम तो जानते हैं पर नीत्शे के अपने लेखन से जो अक्सर काव्यात्मक, सूत्र जैसा और हाँ विरोधाभासी लगता है, थोड़ा घबराते हैं।
सही, टैनर यहाँ एक तरह से जटिल विचारों को सुलझाने वाले गाइड की भूमिका निभाते हैं।
किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो ये कि नीत्शे कोई मतलब सिस्टम बनाने वाले दार्शनिक नहीं थे, कि उनकी हर बात एक तयशुदा इमारत की ईंट हो। नहीं
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वे एक गहरे सांस्कृतिक आलोचक थे। उनकी मुख्य चिंता थी आधुनिक दुनिया में मूल्यों का संकट, यानी जिसे हम वैल्यू क्राइसिस कहते हैं।
हाँ, और टैनर के मुताबिक नीत्शे का पूरा काम पश्चिमी इतिहास की एक जबरदस्त घटना, जिसे नीत्शे ने कहा ईश्वर की मृत्यु, द डेथ ऑफ गॉड, उसकी प्रतिक्रिया है।
और यही टैनर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि नीत्शे शून्यवाद यानी ये मानना कि जीवन का कोई मतलब या मूल्य नहीं है फैला नहीं रहे थे बल्कि उसके आने वाले खतरे से आगाह कर रहे थे और उससे लड़ने के हथियार गढ़ रहे थे।
बिल्कुल, उनके जो मशहूर और अक्सर गलत समझे जाने वाले विचार हैं जैसे अतिमानव, सत्ता की इच्छा, शाश्वत पुनरावृत्ति, टैनर इन्हें अमूर्त सिद्धांत नहीं मानते।
तो फिर क्या मानते हैं?
वो इन्हें मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत औजार मानते हैं, ऐसे औजार जो हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने मूल्य खुद बनाएं, जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई, सुख दुख सब समेत स्वीकार करें और आखिरकार अपने होने का मतलब खुद बने।
और टैनर नीत्शे के जीवन की घटनाओं को भी इससे जोड़ते हैं। जैसे उनका अकादमिक करियर, वैगनर से दोस्ती और दुश्मनी, बीमारियां, अकेलापन,
रूह के विकास से जोड़कर दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे का दर्शन उनकी अपनी निजी संघर्षों की आग में मतलब तप कर निकला है। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है।
सही बात। तो चलिए अब टैनर के साथ नीचे के विचारों की यात्रा पर और गहराई से चलते हैं। शुरुआत उनके जीवन के कुछ विरोधाभासों और शुरुआती कामों से करते हैं। सोचिए, एक तरफ पादरी के घर में परवरिश,
हाँ,
दूसरी तरफ बाद में एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी कहलाना, एक जबरदस्त अकेडमिक करियर जिसे जवानी में ही छोड़ दिया, गहरी दोस्तियां जो बुरी तरह टूटी, खासकर वैगनर के साथ, और फिर वो लगातार बीमारियां और गहरा अकेलापन।
टैनर दिखाते हैं कि ये सब नीचे के दर्शन को समझने के लिए जरूरी है। ये कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि भोगे हुए यथार्थ से उपजी चीजें हैं।
उनका पहला बड़ा काम द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 इसी कश्मकश को दिखाता है शायद।
बिल्कुल। इसमें वो दो प्राचीन यूनानी शक्तियों की बात करते हैं, अपोलोनियन जो व्यवस्था, तर्क, संतुलन, सुंदरता से जुड़ा है,
अच्छा,
और डायोनीजियन जो नशा, उन्माद, अराजकता और जीवन की अंधी ऊर्जा, उसके रचनात्मक और विनाशकारी दोनों पहलुओं से जुड़ा है।
अपोलोनियन और डायोनीजियन।
हाँ, टैनर समझाते हैं कि नीचे के लिए प्राचीन यूनानी त्रासदी इसलिए महान थी क्योंकि वो इन दोनों विरोधी ताकतों का संतुलन साधती थी। वो कला के जरिए जीवन की भयानक सच्चाई, उसके दुख, उसकी बेमतलब लगने वाली क्रूरता का सामना करने की हिम्मत देती थी।
यहाँ मूल बात यह है कि नीचे कह रहे थे कि जिंदगी असल में काफी भयानक और मतलब बेतुका है, और शायद सिर्फ कला ही उसे जीने लायक बना सकती है।
हाँ, उस वक्त उन्हें लगता था कि वैगनर का संगीत शायद आधुनिक जमाने में उस त्रासद कला को फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन ये तो बस कह लीजिए शुरुआत थी।
इसके बाद नीचे का मध्यकाल आता है जहां वे मुक्त आत्मा, फ्री स्पिरिट की तलाश में निकलते हैं। वैगनर से उनका मोह भंग हो चुका था।
हाँ, और शोपेनहावर से भी।
हाँ, और अपने एक और शुरुआती गुरु दार्शनिक शोपेनहावर से भी वो दूर जा चुके थे। अब उनकी शैली बदलती है, वे सूत्र एफोरिज्म में लिखने लगते हैं, छोटे तीखे चुभते हुए वाक्य
जो आपको तैयार जवाब नहीं देते बल्कि हाँ सोचने पर मजबूर करते हैं। इस दौर की किताबें हैं ह्यूमन, ऑल टू ह्यूमन, द गे साइंस।
और इसी दौर में नीचे वो हथौड़े वाले दार्शनिक बन जाते हैं ना?
बिल्कुल। वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं, नैतिकता, धर्म, कला, सच मानो हथौड़ा मारकर देख रहे हों कि कौन सी मूर्ति पोली है और कौन सी ठोस।
और वो तर्क देते हैं कि हमारे सबसे ऊंचे माने जाने वाले आदर्श और मूल्य असल में मानवीय, बहुत मानवीय हैं। मतलब वो किसी ईश्वर या आसमान से नहीं टपके।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारी जरूरतों, हमारे डरों, हमारी कमजोरियों और ताकत पाने की हमारी इच्छाओं से पैदा हुए हैं।
और यहीं द गे साइंस में वो एक पागल आदमी की कहानी के जरिए अपनी सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी गई घोषणा करते हैं।
हाँ, ईश्वर मर चुका है, गॉड इज डेड।
हाँ, टैनर यहाँ बहुत जोर देकर समझाते हैं, ये कोई जीत का नारा नहीं है, ये जश्न नहीं बल्कि एक भयालक संकट की चीख है।
बिल्कुल। पागल आदमी चिल्लाता है, ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मारा है। लोग उस पे हंसते हैं क्योंकि वो समझे ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता के लिए अर्थ, नैतिकता और उद्देश्य की जो नींव ईश्वर पर टिकी थी वो ढह गई है।
अब क्या होगा? अब इंसान किस सहारे जिएगा?
सही। टैनर के मुताबिक नीचे यहाँ शून्यवाद के लंबे अंधेरे के आने की भविष्यवाणी कर रहे थे।
लेकिन नीचे सिर्फ समस्या बताकर रुकने वालों में से नहीं थे, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ईश्वर की मृत्यु से पैदा हुए शून्य के जवाब में उन्होंने लिखा दज स्पोक ज़रथुस्ट्रा 1883-85।
हाँ, ज़रथुस्ट्र, नीचे इसे अपनी सबसे अहम किताब मानते थे।
हाँ, टैनर मानते हैं कि इसकी काव्यात्मक भविष्यवाणी जैसी शैली इसे पढ़ना मुश्किल बनाती है, पर वो इसे एक नए मिथक गढ़ने की कोशिश की तरह देखते हैं, एक ऐसा मिथक जो ईश्वर के बिना जीने का रास्ता दिखा सके। ज़रथुस्त्र एक पैगंबर जैसा चरित्र है जो पहाड़ से उतरकर इंसानों को नई शिक्षा देता है।
और ज़रथुस्त्र की शिक्षाओं के केंद्र में है नीचे के वो क्रांतिकारी विचार जिन्हें टैनर शून्यवाद का इलाज बताते हैं। ये एक तरह का त्रिसूत्रीय नुस्खा है।
हाँ, कह सकते हैं। पहला है उभरमेंच, अतिमानव या ओवरमैन। टैनर साफ करते हैं कि इसका नाजियों की मास्टर रेस से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है।
हाँ, ये नस्ल भेदी विचार नहीं बल्कि एक अस्तित्वगत लक्ष्य है। अतिमानव वो इंसान है जिसने बाहरी मान्यताओं, ईश्वर, समाज, परंपरा की बैसाखी छोड़ दी है। वो अपने मूल्य खुद बनाता है, जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करता है और स्वर्ग में नहीं इसी धरती पर अपने होने का अर्थ खोजता है।
नीचे कहते हैं, इंसान जानवर और अतिमानव के बीच तनी हुई एक रस्सी है।
बिल्कुल, यानी इंसान अभी मंजिल नहीं बस एक पुल है जिसे पार करना है। ये हुआ लक्ष्य।
इस लक्ष्य तक पहुंचने का ईंधन क्या है? वो है दूसरा विचार, विल टू पावर, सत्ता की इच्छा। अब ये सुनकर लगता है कि शायद ये बस दूसरों पर हुकूमत करने की इच्छा है।
हाँ, अक्सर यही समझा जाता है, लेकिन टैनर समझाते हैं कि नीचे के लिए ये कहीं ज्यादा बुनियादी चीज है। ये सिर्फ इंसानी महत्वाकांक्षा नहीं, ये जीवन का मूल स्वभाव है। हर चीज में बढ़ने, फैलने, बाधाओं को पार करने, अपनी शक्ति जाहिर करने की कोशिश।
जैसे एक बीज का पौधा बनना।
हाँ, या एक नदी का समुद्र तक पहुंचना, या एक कलाकार का अपनी कृति बनाना, ये सब सत्ता की इच्छा के ही रूप हैं। ये वो अंदरूनी ड्राइव है जो हमें मूल्य बनाने और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने को उकसाती है।
और तीसरा, शायद सबसे गहरा और चौंकाने वाला विचार, जो इस नुस्खे की असली परीक्षा है, इटर्नल रेकरेंस, शाश्वत पुनरावृत्ति।
हाँ, ये एक विचार प्रयोग है। जरा सोचिए, अगर आपको अपना पूरा जीवन ठीक जैसा आपने जिया है, हर एक खुशी, हर एक गम, हर एक बोरियत भरा पल, सब कुछ हूबहू अनंत बार दोहराना पड़े,
बाप रे,
तो क्या आप खुशी खुशी इसके लिए तैयार होंगे? टैनर इसे नीचे की सबसे बड़ी कसौटी मानते हैं। क्या आप अपने जीवन से इतना प्यार कर सकते हैं, उसे इतनी पूरी तरह अपना सकते हैं कि उसे अनंत बार जीने का वरदान समझे, अभिशाप नहीं?
मुश्किल सवाल है।
बहुत। नीचे के अनुसार केवल अति मानव ही इस विचार पर डरने या निराश होने के बजाय खुशी से हाँ कह सकता है। ये है एमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम करना।
जरथूस्त्रा में ये नए मूल्य स्थापित करने के बाद नीचे अपने अंतिम दौर में उन पुराने मूल्यों पर सीधा हमला करते हैं जिन्हें वे इंसानियत को कमजोर करने वाला मानते थे। बियॉन्ड गुड एंड ईविल 1886 और ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी 1887 जैसी किताबों में।
हाँ, इनमें वो हमारी नैतिकता की जड़ें खोदते हैं। यहाँ वो दो तरह की नैतिकता की बात करते हैं, स्वामी नैतिकता और दास नैतिकता।
स्वामी नैतिकता?
हाँ, ये प्राचीन ताकतवर समाजों से निकली जहाँ अच्छा का मतलब था महान, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, जीवन को हाँ कहने वाला। बुरा का मतलब था साधारण, कमजोर, दब्बू।
और दास नैतिकता?
इसके उलट, दास नैतिकता कमजोर और दबे कुचले लोगों के रिसेंटिमा से पैदा हुई। ये शब्द अहम है, इसका मतलब है एक तरह का दबा हुआ गुस्सा, जलन और बदला लेने की भावना।
अच्छा, रिसेंटिमा?
हाँ, जो लोग असल में ताकतवर नहीं थे उन्होंने चालाकी से मूल्यों को ही उलट दिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों जैसे विनम्रता, दया, आज्ञाकारिता को अच्छा बना दिया और ताकतवर लोगों के गुणों जैसे गर्व, महत्वाकांक्षा को बुराई घोषित कर दिया।
तो एक तरह से मूल्यों का उलटफेर।
बिल्कुल। टैनर दिखाते हैं कि नीचे के अनुसार यहूदी ईसाई धर्म इसी नैतिकता में दासों के विद्रोह की सबसे बड़ी जीत है जिसने पश्चिमी दुनिया पर कब्जा कर लिया और इंसान की आत्मा को मतलब औसत दर्जे का बना दिया।
और यहीं पर नीचे का एक और अहम विचार सामने आता है, पर्सपेक्टिविज्म, दृष्टिकोणवाद। उनका कहना था, कोई तथ्य नहीं है, केवल व्याख्याएं हैं।
हाँ, टैनर इसे समझाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सच जैसी कोई चीज है ही नहीं या हर किसी की राय बराबर है, नहीं।
तो फिर क्या?
बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक सच है कि हम दुनिया को हमेशा अपने नजरिए से देखते हैं। हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं, हमारी सत्ता की इच्छा तय करती हैं कि हम चीजों को कैसे देखेंगे और क्या सच मानेंगे। हमारी नैतिकता भी वो एक तरह की व्याख्या ही है।
तो ये हमें चुनौती देता है कि हम अपने विश्वासों के पीछे छुपे इरादों पर सवाल करें।
बिल्कुल। अपने आखिरी सालों में ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स और द एंटी क्राइस्ट जैसी किताबों में नीचे ने ईसाई धर्म, जर्मन संस्कृति, यहाँ तक कि सुकरात पर भी जोरदार हमला किया, उन सबको जीवन विरोधी कहकर। और फिर जनवरी 1889 में इटली के ट्यूरिन शहर की सड़कों पर उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नीचे के पतन के बाद उनकी विरासत का क्या हुआ, ये भी उतना ही नाटकीय है ना?
हाँ, बहुत नाटकीय है। टैना बताते हैं कि कैसे नीचे की बहन एलिजाबेथ फॉस्टर नीचे, जो खुद राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारों की थीं, ने भाई के लिखे हुए कागजात पर कब्जा कर लिया। उन्होंने नीचे के अधूरे नोट्स और पांडुलिपियों को अपनी मर्जी से संपादित करके द विल टू पावर नाम की किताब छपवाई।
अपनी मर्जी से?
हाँ, उसे इस तरह पेश किया मानो वो नीचे का सबसे महान और व्यवस्थित काम हो और वो उनकी अपनी विचारधारा से मेल खाता हो।
और यही वो तोड़ मोड़ोड़ सी टैनर तर्क देते हैं जिसका फायदा उठाकर बाद में नाजियों ने नीचे को अपना दर्शनिक बना लिया।
बिल्कुल, जबकि नीचे खुद जर्मन राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और राज्य की अंधभक्ति से सख्त नफरत करते थे। टैनर का निष्कर्ष है कि नीचे की असली विरासत इन विकृतियों में नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने लिए अर्थ गढ़ने की जबरदस्त चुनौती में है।
नीचे के विचार अक्सर बिजली की तरह कौंधने वाले कथनों में सामने आते हैं। जरा इन पर गौर करें और देखें टैनर इन्हें कैसे समझाते हैं। पहला तो वही, ईश्वर मर चुका है, हमने उसे मार डाला है, अब हम खुद को कैसे सांत्वना देंगे, हत्यारों में सबसे बड़ा हत्यारा।
हाँ, टैनर फिर याद दिलाते हैं, ये चीख है जश्न नहीं, ये उस शून्य का एहसास है जो पश्चिम के पैरों तले से जमीन खिसकने पर पैदा हुआ है। मूल्य का आधार ही नष्ट हो गया है।
फिर जरथुस्त्र का ये आह्वान, मनुष्य वह है जिसे पार पाना है, अति मानव पृथ्वी का अर्थ है।
हाँ, ये ईश्वर की मृत्यु का सकारात्मक जवाब है। अब मंजिल आसमान में नहीं, जमीन पर है। लक्ष्य है खुद को पार करके वो इंसान बनना जो अपने मूल्य खुद गढ़े और इसी दुनिया में जिए।
नैतिक टॉपर उठा ये कथन, कोई नैतिक घटनाएं नहीं होती, केवल घटनाओं की नैतिक व्याख्या होती है।
ये उनके दृष्टिकोणवाद का निचोड़ है। अच्छा या बुरा चीजों में नहीं होता, हमारे देखने के नजरिए में होता है, हमारी व्याख्या में होता है।
और अगर ये व्याख्या है
तो इसे बदला भी जा सकता है।
बिल्कुल, और आखिर में जीवन को पूरी तरह अपनाने का चरम अमोरफाती, भाग्य से प्रेम। मेरी महानता का सूत्र है अमोरफाती, कि कोई व्यक्ति कुछ भी अलग न चाहे, न आगे न पीछे न पूरी अनंत काल में। जो जरूरी है उसे सिर्फ सहना नहीं बल्कि उससे प्रेम करना।
वाह,
टैनर इसे हर तरह के अफसोस, शिकायत और पलायनवाद जैसे स्वर्ग की उम्मीद का खंडन मानते हैं। ये अपने जीवन के हर हिस्से को, अच्छे बुरे सबको गले लगाने का हौसला है।
तो इन गहरे, कभी कभी परेशान करने वाले विचारों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या हम इन्हें मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं?
शायद पहला सबक है व्यक्तिगत अर्थ का निर्माण, है ना?
हाँ बिल्कुल, अगर ऊपर से लिखा कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। हमें होशपूर्वक चुनना होगा कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमारे जीवन के सिद्धांत क्या होंगे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है पर शायद उतनी ही बड़ी आज़ादी भी।
दूसरा, मुश्किलों को देखने का नज़रिया बदलना। नीचे का अमोर फाती और जो मुझे मार नहीं डालता वाला सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम चुनौतियों और दर्द को सिर्फ कोसने के बजाय
उन्हें विकास और मजबूती पाने का जरिया समझें।
हाँ, सवाल मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ से बदलकर मैं इस अनुभव से कैसे और मजबूत बन सकता हूँ, हो सकता है। भारत में हम अक्सर मुश्किलों को भाग्य या कर्म मानकर सहने की बात करते हैं। नीचे का नजरिया ज्यादा सक्रिय लगता है, वो इसे खुद को गढ़ने का अवसर मानते हैं।
क्या हम अपने विश्वासों की जड़ें खोद सकते हैं? मैं जो मानता हूँ वो क्यों मानता हूँ? क्या ये मेरी अपनी सोच है या समाज, डर, आराम या किसी दबी हुई भड़ास, रिसेंटमेंट से निकली है? ये आत्म मंथन हमें ज्यादा प्रामाणिक बना सकता है।
चौथा, अपनी अलग पहचान को अपनाना, एम्ब्रेसिंग इंडिविजुअलिटी। नीचे भेड़ चाल के सख्त खिलाफ थे। उनका दर्शन उन लोगों को हिम्मत देता है जो भीड़ से अलग महसूस करते हैं। यह हमें अपनी खासियत को पहचानने और उसे निखारने के लिए उकसाता है, भले ही दुनिया हमें समझने में वक्त लगाए।
और पांचवां, शाश्वत पुनरावृत्ति को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना। ये सुनने में भले ही अजीब लगे पर इसे एक फैसले की कसौटी बनाया जा सकता है। कोई अहम काम करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये वो काम है जिसे मैं अनंत बार दोहराने को तैयार हूँ?
ये सोचने पे मजबूर करता है।
हाँ, ये सवाल शायद हमें छोटी मोटी बातों से हटाकर उन चीजों पर ध्यान देने में मदद करे जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। ये हमें हर पल को ज्यादा जिम्मेदारी और जुनून से जीने की प्रेरणा दे सकता है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो टैनर का ये नज़रिया है कि नीचे शून्यवाद के पैगंबर नहीं बल्कि उसके सबसे सजग और हाँ साहसी आलोचक थे। उन्होंने आधुनिक इंसान की रूहानी बीमारी अर्थ के संकट को बहुत पहले पहचान लिया था और उसका इलाज सुझाने की हिम्मत की, भले ही वो इलाज कड़वा लगे। वो आसान जवाब नहीं देते, मुश्किल सवाल जरूर पूछते हैं।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कैसे एक विचारक के विचारों को उसकी मौत के बाद उसकी अपनी बहन ने राजनीतिक मकसद के लिए तोड़ मरोड़ दिया। ये दिखाता है कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं और उनका कितना दुरुपयोग हो सकता है। टैनर की नज़र से देखें तो नीचे का असली संदेश आज़ादी की उस भयानक जिम्मेदारी का है जो ईश्वर की मृत्यु के बाद इंसान के कंधों पर आ पड़ी है। हमें अपने अर्थ खुद बनाने होंगे और ये कोई आसान काम नहीं।
तो श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, अगर नीचे सही थे और पारंपरिक मूल्य वाकई कमजोर पड़ रहे हैं तो हम अपने लिए और अपने समाज के लिए कौन से नए जीवन को हाँ कहने वाले मूल्य गढ़ सकते हैं? हम ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं जिसे हम उसकी तमाम खुशियों और तकलीफों के साथ अनंत बार दोहराना चाहें?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।